हमेशा जब भी आप भलाई का पैगाम लेके उठेंगे ना, कोई स्कॉलर भी आप देख लें, कितने जो हक वाले स्कॉलर हैं उनके पीछे लोग कितना पड़ जाते हैं, कितनी मुखालफतें होती हैं, कितना उनको बुरा भला कहते हैं। आप इन पे देख लें, सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे देख लें, नीचे किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ, तरह तरह की उनके ऊपर बातें बना देते हैं, देख लो ये ऐसे है, ये वैसा है। लेकिन फिर क्या, अगर वो उन्हीं को जवाब देते रहें तो सारा टाइम इसमें लग जाएगा। मुझे अपने असातज़ा कराम की एक बात हमेशा याद रहती कि वो कहते हैं कि किसी को के साथ यानी उलझने की आपको ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करते चले जाएं। आपका काम ये है कि इस काम को नहीं आपने छोड़ना। अगर आपने अपनी एनर्जी देखी, कितना वक्त लगता है, एनर्जी लगती है दूसरे को जवाब देने में भी, फिर वो आप उसको एक जवाब देंगे, फिर वो कुछ और बात लेकर आ जाएगा, फिर एक और जवाब देंगे, फिर आपने सारा अपना वक्त उन्हीं के साथ लगा दिया, तो आप ये नेकी भलाई का काम कैसे करेंगे। लिहाजा उनको करने दें, जो भी कहते हैं कहने दें, आप ऐसे चलते जाएं जैसे आपको सुना ही नहीं है। आपने अपना मकसद नहीं भूलना। जैसे किसी रास्ते में आप देखें आपके सामने कोई रुकावट आ जाती है तो आप क्या करते हैं, साइड बदल के चल पड़ते हैं उसी रास्ते पे आ गए। ये थोड़ी करते हैं कि अब आप मैंने जाना ही नहीं, इस रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ, कोई चट्टान आ गई तो मैंने जाना नहीं। नहीं, अल्लाहु अकबर। अब कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह के इल्जामात लगाते थे, क्या क्या कहते थे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनको तो नहीं जवाब देते रहते थे, आप अपना तबलीग का काम करते रहते थे। तो हो सकता है कल को आपको कोई कुछ कहना शुरू कर दे, कोई वहाबी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुल्लानी कहना शुरू कर दे, कोई, दिल छोटा ना करें और कमजोर ना पड़े और उसके बाद रोने ना बैठ जाए और ये ना कहें कि मैंने पढ़ना ही छोड़ देना। नहीं, हमारा काम किसी से भी बात मनवाना नहीं है बल्कि बात पहुंचा देना बस, क्योंकि आगे यही बात आ रही है। तो आपको उस वक्त ना किसी के साथ झगड़ना है, ना चीखना चिल्लाना है, ना आप अपनी बर्दाश्त को ख़त्म कर देना है कि भाई मेरी बर्दाश्त ही नहीं, अब तो मैं कुछ बोलूँगी और अब मैं उसको सुना के रहूँगी, इसने क्या समझा हुआ, ना आस्तीने चढ़ा के उसके मुकाबले में आ जाना, कुछ भी नहीं करना ऐसा, क्योंकि ये चीज़ फिर इंसान की कमज़ोरी को साबित करती है। जो कमज़ोर होता है ना, फिर वो क्या करता है, उसके पास चीखने का और झगड़ने का और गालियाँ देने का यही हथियार होता है, बस दलील नहीं ना होती। आप देख लेंगे कि जब कोई भी इंसान चीख रहा है तो वो क्यों चीख रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ठोस बात नहीं है कहने को, तो अब वो चीख के साथ शोर मचा के या गालियां दे के या झगड़ा करके अपनी बात को मनवाना चाहता है धौंस के जरिए। जिसके पास दलील होती है उसको धौंस की ज़रूरत ही नहीं होती। तो दलील में जब कमी होती है तभी हम धौंस जमा के दूसरे को नीचा करना चाहते हैं और दूसरे की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। तो ये एक कमज़ोर चीज़ है, लिहाजा कभी भी इस तरह से कमज़ोरी ना दिखाएं, बल्कि उनको दलील के साथ बात करें और दलील पे अपना जहन लगाएं, उसके अंदर अपना वक्त लगाएं। लेकिन इन्होंने देखें यहाँ पे उनकी बातों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने इनकी बातों को लेकर इतना बड़ा वो रोना नहीं शुरू कर दिया कि अब अच्छा ये हम तो देखो जो ही इनकी खैरख्वाही कर रहे थे, इनको देखो जी ये कैसे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं, जिस बंदे के अंदर ये हौसला ना हो वो फिर ये काम भी नहीं कर सकता। और सोचें कि पैगंबरों के हौसले कितने बड़े थे, कितने बड़े थे। हमारे जैसे लोग जिनकी कोई ऐसी इज्जत नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं है, लेकिन हमें भी इतना बुरा लग जाता है अगर कोई कुछ कह दे, और इस वजह से हम किसी को अच्छाई की बात कहते ही नहीं कि कुछ कह ना दे मुझे। आधी टाइम तो हम इसलिए किसी को छेड़ते ही नहीं कि मुझे कुछ कह देगा, मेरी इज्जत ना कम हो जाए। कितनी दफा हम ये चीज़ छोड़ देते ना कि मेरी इज्जत ना कम हो जाए, हमें पता है ये काम गलत है लेकिन अब नहीं, फिर मैं अच्छी नहीं बनूंगी ना, मैं अच्छी नहीं रहूंगी, लोग फिर मुझे क्या समझेंगे या लोग मेरे साथ मुझे को बुरा ना समझना शुरू कर दे, बस मैं सबकी गुड बुक्स में रहूं। ये हमें बड़ा शौक होता है और इस शौक की वजह से हम किसी को कुछ कहते ही नहीं। हमें पता है हम किसी को अपनी दोस्त है किसी को कह सकते हैं, देखिए ये जो आप शादी कर रही हैं ना ये सही नहीं, कितना गुनाह आप अपने सर लेंगी, आप इतना ये सारा म्यूजिक कर रही हैं, लोगों को साथ बिठा रही हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। किसी की जरूरत होती है? नहीं, साथ खुद भी जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद इतनी बातें बनाते हैं, तो वहीं पे आप उसको कहते। लेकिन क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हम सब के आगे अच्छा फेस रखना चाहते हैं। पैगंबर ऐसे नहीं थे सबके सामने बस हम देखिए उनको कितनी कितनी बातें सुननी पड़ी। हमें हौसला ही नहीं होता कि हम कोई बात सुन लें, बस सारे मुझे अच्छा कहते रहे, सब कहते रहे कि इससे ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? इसलिए ये किसी को कुछ कहती ही नहीं। तो ये हक बात करना और उसके लिए तकलीफ उठाना और उसके लिए इल्जाम सहना, ये तो पैगंबरों का तरीका था। हम इसको अखलाक कहते हैं कि दूसरों की बुराइयों को भी हम कहते रहे कि आप बड़ा अच्छा कर रही हैं, क्या वाह वाह क्या बात है आपकी, आपने तो ऐसा फंक्शन किया जैसे कोई कभी किसी ने किया ही नहीं। इससे पता चलता है ना, हमें अपनी इज्जतें ज्यादा अजीज हैं, अल्लाह का दीन से हमें कोई ख्याल नहीं है कि अल्लाह का दीन जाए जो मर्जी तोड़ता रहे, जो मर्जी करता रहे, हमें इससे क्या, हम बस अच्छे बन के बैठे रहे। दुनिया जहन्नुम में जा रही है जाती फिरे, लेकिन जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है ना, उसको उसके दीन से मोहब्बत होती है। याद रखें, ये एक निशानी है इस बात की कि आपको अल्लाह से मोहब्बत। फिर अल्लाह की नाफरमानियां जो है ना, आपको अच्छी नहीं लगती, फिर अल्लाह की नाफरमानियों पे आपका दिल कुड़ता है, फिर आप अपनी जुबान से भी कहते हैं, जहां भी आपका बस चलता है, ये नहीं कि बस मैं अच्छी बनी रहूं। तो वो देखें, ये होता है अखलाक कि उन्होंने बात भी कही लेकिन गुस्सा भी नहीं आया। अब ये आपको कोई नहीं कह रहा कि आप दूसरों के साथ जब जाके बात करने लगे तो बस आपे से बाहरी हो जाएं, रूड होना शुरू हो जाएं, उनको ताने देना शुरू हो जाएं, अकड़ के बात करें। नहीं, बात भी करनी है लेकिन भले तरीके के साथ भी करनी है। और यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा वल्लाही इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह की कसम खा के अगर वो कहते तो हो सकता था वो अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह की कसम है कि हम रसूल हैं, अल्लाह की कसम खा के भी एक मतलब बात कही जा सकती है, लेकिन वो फिर बात गलत भी हो सकती है। कसम तो सच्ची भी हो सकती है और नहीं भी सच्ची हो सकती, लेकिन जब कहा ना कि अल्लाह ताला को पता है, हमारे रब को पता है, तो अब आपने रब को गवाह बना लिया कि हमें पता है कि अल्लाह तो जानता है, उसको तो इल्म है। ये वो ही कह सकता है जो बिल्कुल सच्चा हो। और मोमिन के ऊपर ना जब भी मुश्किल हालात आते हैं ना, तो उसको जान दे तसल्ली कहां से मिलती है कि मेरे रब को तो पता है ना मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे रब को तो पता है कि मैं उसकी खातिर कर रही हूँ, मेरे रब को तो पता है ना कि मैं सच्ची हूँ। दुनिया जितना मर्जी मुझे जो मर्जी झूठी कह ले, बुरा भला कह ले, मेरे रब को पता, मैं उसकी खातिर तुम्हें समझा रही हूँ। समझाई? लोग तो गलत कहेंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें भी बनाएंगे और इंसान हर्ट भी होता है, लेकिन उसके बाद यही चीज तो तसल्ली देती है, मेरा रब तो देख रहा है ना, उसको तो पता है ना। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो सिर्फ है पहुंचा देना खुल्लम खुल्ला। अब हम भी लेक्चर के बाद किसी आप तकरीर के बाद लोगों को सुनते हैं अमा अलैना इल्लल बलाग, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहां तक नहीं कहा इल्लल बलागुल मुबीन। क्यों? इसलिए कि हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना नहीं है, हमारा काम है साफ तौर पे क्लियरली पहुंचा देना। मुबीन यानी ऐसा पहुंचा देना कि जिससे दूसरे के दिल को समझ आ जाए, उसको अगर वो इनकार कर भी रहा है तो अपनी हठधर्मी तकब्बुर की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आई, पूरा पूरा सही तरीके से खुल्लम खुल्ला उसको बात पहुंचा देना। एक होती है ना, हमने तो बता दिया, हमें क्या, थोड़ा सा बता दिया बस, आगे कुछ ज्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, कुछ समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं की, बस जितना मतलब बस अल्लाह एक है, नहीं मानते तो ना मानो, फिर चलो ये भी एक पहुंचा देना ही है ना। हाँ, इस्लाम ही सच्चा दीन है, अगर आपने नहीं सुनना ना सुने, हमने तो आपको पहुंचा दिया कि इस्लाम तो सच्चा दीन है, ये भी एक पहुंचा ही देना है ना। लेकिन ये मुबीन नहीं है, मुबीन वो है कि आपने दूसरे के दिल को वाकई दिल तक बात पहुंचा दी कि दिल तो कह रहा है कि वाकई ये सही है, इतनी कन्विंसिंग बात की है, اتنی دلیل کے ساتھ بات کی ہے، ایسے اس کو موٹیویٹ کر دیا، سمجھ آئی بات؟ تو بلاغ مبین کرنا ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور ورنہ تھوڑا بہت پہنچا دینا، یہ بات بس ایک سینٹنس میں بتا دینا، وہ تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ان کو پتہ چل ہی رہا ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ ہم نہیں بھی بتائیں، یہ تو سب چیزیں سب کو ہی پتہ ہے، تو سر سے اتارنے والا کام نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو پہنچا رہے ہیں وہ بھی پورا ایسے ہو کہ کنونسنگ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، حق ادا ہو گیا ہو، بات پوری طرح دوسرے کو سمجھ آ گئی ہو، اور ایسی بھی بات نہ ہو کہ اتنی مشکل ہو کہ وہ اس کے سر سے ہی گزر جائے اور آپ کہیں جی میں نے تو پہنچا دیا نا، نہیں، بعض لوگ اپنے علم کی داغ بٹھانے کے لیے اتنے مشکل مشکل جملے بولتے ہیں، ایسے الفاظ انہیں لوگوں کے سر سے ہی گزر جاتے ہیں، یا اتنے تیز بولتے ہیں کہ ابھی ایک بات دوسرا سمجھ ہی رہا ہے تو دوسری پہ تیسری پہ چوتھی پہ بھی پہنچ گئے، وہ بیچارہ ابھی پہلی بات کو ہی کوشش کر رہا ہے کہ میں سمجھوں اس کو، انڈرسٹینڈ کروں، اتنا انفارمیشن اوور لوڈ ہوتا ہے کہ وہ بندہ لاسٹ ہی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں کتنے آسان طریقے سے سمجھایا گیا نا، کم پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، تو ایسی بات ہونی چاہیے جو کنونسنگ بات ہو، جو دلیل کے ساتھ بات ہو۔ اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، اب یہ آپس میں ان کی جو کنورسیشن ہے 19 آیت تک یہی چلتی ہے، فالو انہوں نے کہا، اب بچائے اس کے کہ پیغام کے اوپر کوئی بات کریں کہ یہ کہ پیغام کیا ہے یا نہیں، اس کے اوپر کوئی سمجھنے کی کوشش کریں، ان نہ تطیرنا بکم، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری ایسے نحوست آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بستی کے اوپر قحط سالی آ گئی تھی یا اس طرح کچھ، اور یہ باتیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اوور دا ایئرز یہ باتیں ہوتی رہی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک مکالمہ ہوا اور اس کے بعد بس ختم۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ 10 سال تک یہ تبلیغ کرتے رہے تھے، لیکن قوم کا یہی ایک ہی طریقہ تھا، وہ آگے سے ایسی باتیں ہی کرتے تھے، تو اب ان کے پاس چونکہ دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، تم تو منحوس ہو، نحوست لے کر آئے ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ نحوست کا کانسیپٹ نا بڑا پرانا ہے، اس وقت بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے کچھ لوگوں کو، اور آج تک کچھ لوگ دوسروں کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ہیں نا ہمارے ہاں بھی معاشرے میں، ایسی سپرسٹیشس باتیں ہیں، شادی پہ کوئی سی بیوہ کا سایہ نہ پڑ جائے دلہن کے اوپر، جس کے بچے مرتے ہوں وہ اس کا سایہ نہ پڑ جائے، اس کا بھی بچہ ہونے والا ہے، اچھا فلانی نہ ہمارے گھر آئے، یہ چیز نحوست ہے، دیکھو ذرا اس کا چہرہ دیکھ لیا صبح صبح تو ہمارے تو سارے کام اب خراب ہو جائیں گے، اس کو نہ دیکھنا، اس طرح کی چیزیں ہم نے بھی توہمات ایسی بنائی ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری توہمات ہیں، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہو منحوس، تمہاری وجہ سے نحوست ہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوچتے تھے ہم ان کے آنے سے پہلے تو ہم اچھے بھلے رہتے تھے، اب ہمارے اوپر مشکلات آنے لگی ہیں، تو وہ کہتے تمہاری وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، جیسے قریش مکہ بھی کہتے تھے نا، ہم تو پہلے اچھے بھلے رہ رہے تھے، آپ کی وجہ سے ہمارا سارا یہ سیٹ اپ خراب ہو گیا، گھر میں ایک مسلمان ہو گیا، ایک کافر ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر ہے، اس طرح کی کئی چیزیں چل رہی تھیں، تو وہ تو ایک پریشانی تو ہو گئی نا، گھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے مسئلے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ آگے بھی بات آ رہی ہے کہ مشکلات، جیسے کہ ان کے اوپر بھی قحط سالی آ گئی، اب وہ اس کو بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ رسولوں کو، کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، ایک اور بھی بات، ایک اور اینگل سے بھی اس کو سمجھے کہ جو مشکلات آ رہی ہیں نا وہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی کیا مطلب کہ ہماری زندگی مشکل ہو رہی ہے تمہاری باتوں کی وجہ سے، کیونکہ جب دین کے حکموں پہ ہم چلیں گے تو تب تو ہمارے یہ ہماری زندگی کیا رہ جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی، کیا یہ تمہاری نحوست ہے جو تمہیں ہمیں کہہ رہے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہماری کیا انجوائمنٹ رہ جائے گی، अपना लाइफ स्टाइल बदलने को कह रहे हो। लाइफ तो फिर हमारी क्या बहुत बोरिंग हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये क्योंकि हर दौर में इंसान क्या चाहता है, मादर पिदर आजाद जिंदगी गुजारे, उसमें मजा आता है उसको, किसी की ना सुनूं, मेरा जो दिल करता है मैं वो करूं। अब जब कोई कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, आप अपनी लाइफ को चेंज करें, एक अल्लाह की फरमा बरदारी के अंडर आए, तो फिर दीन अच्छा नहीं लगता, फिर इसके अहकाम तो मुसीबत लगने लगते हैं। हमें डॉक्टर कह देना कि आप अब आप आपको ये बीमारी लग गई, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अब आप से आपने शुगर नहीं खानी, हम बड़ी सवज्जो से उसकी बात सुनते हैं, नोट भी करते हैं, अच्छा जी इतनी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा जी मुझे इतना इस चीज से परहेज करना है, चिकनाई नहीं खानी, ये नहीं, क्यों? इसलिए कि मैं बचना चाहती हूँ, आए कहीं मरी ना जाऊं। हालांकि बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं ना, चाहे जी ना भी चाह रहा। क्या बात है, ये अल्लाह ताला की बात एक डॉक्टर की बात जितनी भी अहमियत नहीं रखती। ये अल्लाह ताला फरमाता है ये करो और ये नहीं करो, तुमने इससे बचना है, इसको नहीं करना और ये काम करने हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बात हमें बस उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं होती, उसको हम अहमियत ही नहीं देते, और हमें लगता है कि हम बच जाएंगे आखिरत में ना। इसलिए यहां पे दुनिया में बचने के लिए एक डॉक्टर की बात मान रहे हैं, वो कहता है वरना मर जाओगे अगर तुमने ये नहीं अब अपना लाइफस्टाइल चेंज किया ना, कितना कुछ करने को कहता है और कितने परहेज बता देते हैं डॉक्टर। इसीलिए हम वो परहेज करते हैं और उसकी बातों पे अमल करते हैं, क्योंकि हमें बचना है। लेकिन जिनको आखिरत में बचने का कोई ख्याल ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं आखिरत का, और उनको लगता है कि हम तो बचे ही हुए हैं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे जाके तो हमने सीधे जन्नत में चले जाना, वो क्यों फिर परहेज करेंगे गुनाहों से और क्यों अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे, उनका तो काम पहले ही बना हुआ है। यही शैतान कहता है ना। तो वो लोग कहते थे कि देखो हमें लाइफ चेंज करने को कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो हमारी मुसीबत आ गई, हम किस मुश्किल में पड़ जाएंगे, नहुसत है ये तुम्हारी। तो वो इसको नहुसत समझ रहे हैं, और वैसे भी दूसरे सेंस में भी देखा जाए तो उनको लग रहा था कि ये हमारी इनकी वजह से नहुसत है, हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है। उसका वो जो जवाब देंगे उसके अंदर इसको मैं बताऊंगी कि कैसे ये नहुसत नहीं थी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं लइन लम तंतहु, उन्होंने आगे और धमकी दी, अगर तुम अब बाज ना आए लनर्जुमन्नकुम, हम तो तुम्हें रजम ही कर देंगे, पत्थर मार मार के तुम लोगों को मार देंगे अगर तुमने बाज ना आए अपनी इस तबलीग से। यानी वो किस हद तक पहुंच गए थे, कितनी हद तक उनके लिए इनटॉलरेबल हो गया था इनकी बातें सुनना। और इसका मतलब है कि वो रसूल बाज नहीं आते थे अपना पैगाम देने से, इसका मतलब वो पैगाम दिए जा रहे हैं ना कि वो इस एक्सटेंट पे आ गए, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा तुम झूठे हो, तुम्हारी तरह के इंसान हो और तुम कुछ नहीं है, रहमान ने कुछ नहीं नाजरे, पहले तो इस हद तक थे। अब जब वो बाज ही नहीं आ रहे और अपना पैगाम देते ही जा रहे हैं, वो हट ही नहीं रहे, तो अब तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कह रहे हैं हमारी जिंदगियां तो हराम हो जाएंगी हम इनके कहने पे चले तो, इनके जो सबक पढ़ाए हुए हैं वो हम चले तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, आखिर हमने दुनिया में भी रहना, तो ये तो अपनी नहुसत लेके जाओ और अगर तुम नहीं बाज आए हम तुम्हें रजम कर देंगे, वाला ये मसन्ना को मिलना अजाब नली, और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। दर्दनाक अजाब का मतलब क्या है, ये इस तरफ इशारा है कि तुम्हें रजम करने से पहले भी हम इतना टॉर्चर करेंगे ना, यानी जैसे आप कहें ना कि ऐसी ऐसी सजाएं दे के या जुल्म के साथ किसी को मारना, टॉर्चर कर कर के मारना, जैसे आप देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला पे कितना टॉर्चर किया गया, हज़रत हबीब को कैसे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको शहीद तो कर दिया गया लेकिन एक एक उज्व काट काट के, फिर या जो फिरौन के जादूगर थे, ठीक है एक मारना होता है एक ही दफ़ा मार देना, एक मारना के को लिम्स को काट दिया, एक तरफ का बाजू एक तरफ की टांग फिर दूसरा, फिर इस तरह वसूली चढ़ाया गया, फिर वहां पे तड़प तड़प के मार रहे हैं, तो ये सारा अजाब अलीम है ना, दर्द के साथ ऐसा अजाब दे के तुम्हें मारेंगे, ये कितने वो उनके खून के प्यासे हो गए। यानी इंसानों से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, कि कोई हमें कहे कि सीधे रास्ते पे आ जाओ, सीधे हो जाओ। और इसी वजह से आप देख लेना बनी इसराइल में कितने रसूलों को उन्होंने कत्ल किया, एक एक जमाने के अंदर कितने रसूलों को कत्ल किया जाता था, और वो किस वजह से, कि उनका पैगाम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि एक वाकया बताया जब कि एक नबी ऐसे गुजरे हैं कि उनकी कौम ने उनको इतना मारा कि वो खून आलूद हो गए, मगर वो अपने चेहरे से खून साफ करते जाते थे और फरमाते जाते थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर देना, इनको इल्म नहीं है। ये रसूल कैसे होते हैं, और इनकी क्या, इस धमकी के बाद वो लोग बाज आ गए अपना पैगाम देने से? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो फिर भी बाज नहीं आए, वो पैगाम देते रहे। और ये भी पता चलता है कि इतनी बड़ी बात सुन के भी उनकी खैरख्वाही में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि उनको कुछ मिल जाना था इनके ईमान लाने से, लेकिन ये उनकी खैरख्वाही थी। रसूल हमेशा कौम का खैरख्वाह होता है, ये उनकी खैरख्वाही थी कि वो चाहते थे कि ये बात को समझ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रसूल का बताया, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिसाल थी। ये उहद के अंदर जब लोगों ने इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया था, बाज़ कहते हैं कि नहीं, एक पहले पैगंबर भी गुजरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था, क्या आपने भी यही फरमाया था, लेकिन एक पहले भी पैगंबर गुजरे थे जिनको लोगों ने इतना मारा था, तो क्या उनकी शान में कोई कमी आई? नहीं। तो जब देख लेंगे कोई किसी वो बुरा भला कह रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसका साथ नहीं दें और हम उसके साथ खड़े हो जाएं कि हाँ नहीं देखो ये तो दूसरे को मार रहा है तो यही सही होगा, यही पावर में है, और दूसरे की क्या वैल्यू है। इसको आप किसी को पिटता हुआ देख लें, किसी को बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरे हुए देख लें, तो आपके दिल के अंदर आता है कि ये कौन सी कोई बड़ी चीज़ है। लेकिन हक का ये मयार नहीं है, कभी हक को इस तरह से ना इसको तोलें कि ये क्या, इसकी कितनी इज्जत है, लोग इसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके साथ कितने लोग लगे हुए, ये हक का मयार नहीं। रसूलों के साथ तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, पैगाम को हमेशा देखा करें। तो हम मुतासिर किस चीज़ से होते हैं? तादाद से। अच्छा इतने ज़्यादा लोग हैं इनके साथ, अच्छा इस क्लास में इतने लोग आते हैं, इस सितारे में इतने पढ़ते, अच्छा फिर तो ये ठीक ही होगा। नहीं, ये मयार नहीं होना चाहिए। पैगाम क्या दे रहे हैं वो देखना चाहिए। और आप देखें ये भी नहूसत वाला जो बात है, ये फिरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को यही कहा था कि आप तो मनहूस हैं, तो इन्होंने भी यही कहा। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तड़प अता फरमाए, ऐसा शौक दे दे, ऐसी इंसानियत की हमदर्दी दे दे कि जो हमें अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकामात तक पहुँचा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم